ओम शांति। एक प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो, उसने कहा है एक जगह कि मनुष्य जो है वो स्वतंत्र पैदा होता है, परंतु चारों ओर जंजीरों में बंधा हुआ है। मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। जगदीश भाई ने अपने एक लेख में इस वाक्य पर टीका करते हुए लिखा है कि शायद लेखक ने गलत लिखा है, क्योंकि मनुष्य मुक्त पैदा ही नहीं होता है। जब आत्मा देह में आती है तो अपने साथ पूर्व जन्म के हिसाब किताब, बहुत सारे बंधन, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारी आसक्तियां, कार्मिक अकाउंट, सब कुछ लेकर आती है। सारा जीवन ही मनुष्य प्रयास करता है मुक्त होने का, परंतु परतंत्र की बेड़िया उसे बांधे रखती है। और जो आत्मा परतंत्र है उसकी क्या गति होती है? सोमवार का वरदान, वो आत्मा न चाहते हुए भी देह के बंधन में बंधी रहती है, नीचे गिर जाती है अवस्था, कभी खुशी तो कभी गम, बीच भंवर में रहती है और परेशान और नीरस स्थिति का अनुभव होता है। कोई भी स्पष्ट सहारा ऐसी आत्मा को महसूस नहीं होता है। तो कैसे बंधनों से मुक्त हो? बाबा ने कहा था, मास्टर सर्वशक्तिवान बन, सर्व बंधनों से मुक्त बनो, तो ही विश्व की आत्माओं को क्या कर सकते हैं? सकाश दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो आज की मुरली में ब्रह्मा बाबा की कौन सी शुभाश है? कौन सी आश है कि बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बन जाए, इनकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए और सारे ही कैसे हो जाए? मुक्त हो जाए। बाबा आह्वान कर रहे हैं। किस लिए आह्वान कर रहे हैं? मुक्ति धाम का उद्घाटन, गेट खोलने के लिए आह्वान कर रहे हैं और साथी बनकर सबको चलना है। तो मुक्त बनना है, स्वयं को मुक्त बनाना है। जिन जिन बंधनों में हम बंधे हैं, बेड़िया, चेन, सलाखे, जंजीरे, उन सभी से स्वयं को मुक्त करना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा की ये आश है, बाप दादा की ये आश है। इस आश के दीपक को क्या करना है? जगाना है और ये दीपावली मनानी है। तो बाबा ने आज की मुरली में बहुत सारे त्योहारों को याद किया है। सबसे पहला कौन सा त्योहार याद किया? अष्टमी का। दो अष्टमियां होती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। तो बाबा ने आज दुर्गाष्टमी, चैत्र नवरात्रि की कितने 9 दिवस होते हैं, उसमें आठवां दिवस या आठवीं रात्र नवमी होती है और उसके बाद फिर होता है दशवीं दशहरा। तो बाबा ने दुर्गा बनने के लिए कहा है। दुर्गा बनकर क्या करना है? दुर्गुणों को समाप्त करना है और क्या करना है? सर्व गुणों को स्वयं में धारण करना है। माताओं के लिए क्या कहा बाबा ने आज? सभी माताएं कौन है? शक्तियां है और उनके पास क्या है? शस्त्र है। शस्त्र सदा कायम रहते हैं। शस्त्र ही माताओं का क्या है? श्रृंगार है। शस्त्र ही श्रृंगार है। तो शुभ भावना से सभी को वरदान दो, दानी, महादानी और वरदानी बनो। तो बाबा कह रहे हैं कि अष्टमी मनाई है, बाबा ने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ समान कौन सा है? मैं नव दुर्गा हूँ, शस्त्रधारी, शस्त्र सदा कायम रहने वाले शस्त्र ही जिनों का श्रृंगार है। शक्ति सर्वशक्तिवान को किसने नीचे लाया? बाबा ने कहा अपनी तपस्या से शक्तियों ने सर्वशक्तिवान को नीचे उतारा है, तो माताओं को अब क्या करना है आगे? इसके लिए बाप को प्रत्यक्ष करना है, इतना बड़ा कार्य है। तो सबसे पहले कहा बाबा ने अष्टमी, अष्टमी के बाद है फिर रामायण में दिखाया है राम ने नौ दिन तक दुर्गा की पूजा की और फिर दसवें दिन रावण को मारा। तो सबसे पहले है अष्टमी, अष्टमी के बाद दूसरा त्योहार दशहरा। तो हम सभी कौन हैं? विजयी रत्न। बाबा ने क्या कहा आज? हम सभी कौन हैं? विजयी रत्न। और ये उत्सव विजय का है, विजय दशमी। तो रावण का सर्वनाश, रावण को जलाना। बाबा ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि रावण को केवल जलाया है या फिर उसके सर्व वंश को जलाया है? रावण का परिवार बहुत बड़ा है, तो केवल रावण को जलाया है या उसके वंश को जलाया है? केवल रावण को जलाया है या उसके संपूर्ण राज्य को जलाया है? किस तीली से? अविनाशी है तीली है या फिर अल्पकाल की तीली है? थोड़े समय के लिए विकारों से मुक्त हुए, सारे विकार फिर से आ गए। दृढ़ संकल्प की तीली से अविनाशी विजय प्राप्त करने वाले। याद प्यार में बाबा ने क्या कहा है? अविनाशी दृढ़ संकल्प की अविनाशी तीली से अविनाशी विजय प्राप्त करने वाले। तो हम सब कौन है? अविनाशी दृढ़ संकल्प वाले और जिनकी अविनाशी तीली जिनके पास है, ऐसे ऐसे रावण को समाप्त करना है। भूमि डोली जब गिरा दशकंदर, तो दूसरा व्यवहार हुआ दशहरा। दशहरा के बाद फिर नहीं, उसके पहले कुछ है भरत मिलाप। भरत मिलाप अर्थात ब्रदरहुड, अर्थात भाई भाई की दृष्टि। रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है भरत के प्रेम का। भरत का जो स्नेह है अपने भाई के प्रति, प्रेम की पराकाष्ठा है वो। दिखाया है कि जब भरत श्री राम मिलने आते हैं, रावण को समाप्त किया, सीता को छुड़ाया और पुष्पक विमान से जब वापस अयोध्या आए, तो भरत की जो स्थिति का वर्णन है मानस में, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत वर्णन है। कहीं पट कहीं निशंग, कहू पट कहू निशंग, कहू धनु तीरा, चार चीजें छोड़ता है। जैसे ही श्री राम को देखता है तो एक तरफ वस्त्र गिरे, दूसरी तरफ धनुष बाण गिरा, कहीं उसके तीर गिरे, कहीं उसका तरकस गिरा। कथाकार इसके बहुत सारे अर्थ लगाते हैं। वो कौन सी ऐसी चार चीजें हैं? अलग अलग कथाओं में अलग अलग बातें भक्ति में बताई जाती है। धर्म अर्थ मोक्ष काम, सभी चीजों का त्याग किया जब श्री राम से मिला। मिले प्रेम अधीरा, श्री राम से इस तरह मिल रहा है जैसे कि अश्रुधारा बह रही है, रुक नहीं रहे है। गिरी भूमि नहीं उठत उठाए, तुलसीदास ने लिखा है कि भूमि पर ऐसे गिरा है श्री राम के चरणों में कि उठत उठाए नहीं उठ रहा है। तो भरत का जो प्रेम है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। बाबा किस प्रेम की बात कर रहे हैं? ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व। जब तक यह प्रेम नहीं, जब तक यह विश्व बंधुत्व का भाव नहीं, जब तक भाई भाई की दृष्टि नहीं, तब तक स्नेह भी नहीं और तब तक सेवा भी नहीं और तब तक सेवा में सफलता भी नहीं। तो सबसे पहले अष्टमी, जिसमें दुर्गुणों का नाश किया और सर्वगुणों को धारण किया। उसके बाद रावण को पंच सहित, रावण को उसके संपूर्ण राज्य सहित जलाया। उसके बाद मिलन मनाया, इससे भरत मिलाप। बाबा ने कहा इसका रहस्य कभी और सुनाएंगे, कभी आया है मुरलियों में बाद में पेंडिंग काम है बाबा का अब कब नहीं अब फिर उसके बाद भरत मिलाप, और भरत मिलाप के बाद है सेवाओं में सफलता, और अंत में क्या है फिर उसके बाद है दीपमाला, दिवाली। जैसे ही राम अयोध्या आए, हरेक को लगा जैसे कि श्री राम हमसे मिल रहे, प्रभु धरि विविध शरीरा। राम हरेक अयोध्या वासियों को लगा कि श्री राम स्वयं हमसे मिल रहे हैं, इतने रूप प्रकट किए, ऐसा वर्णन है उसमें। तो उसको कैसे मनाते हैं, सारी मुरली अगर देखा जाए तो दिवाली के ऊपर है। कौन सी दिवाली? बाप दादा के शुभ आशाओं के दीपक जगाने हैं, यह दिवाली मनानी है। ये है सच्ची सच्ची दिवाली। जब ऐसी दिवाली मनेगी उसके बाद अंतिम अवस्था कौन सी है, क्या प्राप्त होगा? राज तिलक प्राप्त होगा। तो बाबा आज किन किन से मिल रहे हैं? विजयी रत्नों से मिल रहे हैं, माताओं से मिल रहे हैं जो कि शक्तियां है, दुर्गाए हैं, पांडवों से मिल रहे हैं जो कि शक्ति स्वरूप है, बाबा कह रहे हैं। और किससे मिल रहे हैं? कुमारियों से मिल रहे हैं। कुमारियों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है एक, किससे बच गई? बाप दादा को हजार गुना, बाप दादा हजार गुना खुशी होती है बाप दादा को, किसको देखकर? कुमारियों को देखकर। और कुमारों को देखकर कितनी खुशी होती है फिर? 10,000 गुना तो कुमारों को देखकर 10,000 गुना खुशी, और कुमारियों को देखकर 1,000 गुना खुशी क्यों होती है? क्योंकि क्या हो गया, बड़ा भारी शब्द प्रयोग किया है बाबा ने, कसाईयों से बच गई। कसाई कौन है इसके ऊपर चिंतन करना फिर, अब किसके लिए कहा है कसाई? तो बाबा कितनी सारी आत्माओं से मिलते हैं, और हर एक को ऐसा लगता है कि जैसे हम से मिल रहा है। तो नीचे मुरली चल रही है और ऊपर क्या चल रहा है? क्लास के समय चिटचैट, बाप दादा की रूहरियान चल रही है, नीचे क्लास और ऊपर रूहरियान। क्लास में प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन सा? विजयदशमी मनाई है, ये जानते हो, मानते हो कि हमने, मैंने विजयदशमी मनाई है, मैंने अष्टमी मनाई है, ये प्रश्न पूछ रही है दादी जी। और बाबा की ऊपर रूहरियान चल रही है, ब्रह्मा बाबा को क्या हो रहा है ये प्रश्न सुनते ही बहुत सारी चीजें हो रही है उनको, क्या हो रहा है उसको, क्या हो रहा है उसके मन में, क्या हो रहा है उनके, बेचैनी हो रही है, और क्या हो रहा है? बहुत ही आश्चर्य लग रहा है, एक विशेष बात हो रही है, और क्या हो रहा है? आह्वान कर रहा है बाबा ऊपर, सुनते सुनते बाप दादा ब्रह्मा बाबा आह्वान कर रहे हैं। किस लिए आह्वान कर रहे हैं? कि बच्चे मुक्तिधाम का गेट खोलने के लिए आह्वान कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा? मांगनी कर रहे हैं, मांगनी। एक ही मुरली में न मालूम कितनी भाषाएं होती है, मांगनी शब्द मराठी और गुजराती का है। तो बाबा मांगनी कर रहे हैं, क्या मांगनी कर रहे हैं? बाबा चाबी मांग रहे हैं, क्योंकि बाबा से रहा नहीं जाता, देखा नहीं जाता, बाबा के मन में भी ड्रामा को जानते हुए भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं। कौन से प्रश्न? कि ये बच्चे अब तक ऐसा क्यों करते हैं, अब तक बदलते क्यों नहीं, कब बदलेंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न ब्रह्मा बाबा के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। और तीव्र उमंग और तीव्र लहर उत्पन्न हो रही है। मास्टर सागर में तीव्र लहर उत्पन्न हो रही है कि सभी संपूर्ण बन जाए, सभी के बुद्धियों का सभी की बुद्धियां परिवर्तन हो जाए। ऐसे श्रेष्ठ संकल्प ब्रह्मा बाबा के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। इसी संकल्पों के वश शिव बाबा से मांगनी कर रहे हैं, क्या दे दो? चाबी दे दो। तो शिव बाबा क्या कह रहे हैं, फिर देंगे या नहीं देंगे? आप यदि शिव बाबा के स्थान पर होते तो क्या करते? डॉक्टर सुष्मिता, आप क्या करते अगर आप बाबा के स्थान पर होते तो? देते या नहीं देते? देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए, फिर बाकी सब पीछे पड़ जाएंगे। बाबा ने अब साकार मुरलियों में कहा है, ये चाबी केवल मेरे पास है, ये चाबी मैं नहीं देती देता हूँ, तुम लोग विश्व की राजाई ले लो, परंतु ये चाबी मैं नहीं दूंगा। तो बाबा के सामने भी धर्म संकट है, देनी है या नहीं देनी है। जैसे तुम लोग जब तुमसे पूछा जाता है कि रावण को जलाया है, तो ना तो हाँ में हाथ ऊपर करते हो, ना तो ना में हाथ ऊपर करते हो। लिखने में ना तो झूठ ही बोलते हो, ना ही स्पष्ट ही बोलते हो। एक दो रेडीमेड उत्तर तुम्हारे पास है, बस उन्हीं जवाबों में से जवाब देते हो। तो बाबा भी ना तो हाँ करते हैं, ना तो ना करते हैं। तो हमने बाबा से ही सीखा। अच्छा, तो बाबा के मन में सब कुछ जानते हुए, ड्रामा को जानते हुए, हर एक आत्मा के पार्ट को जानते हुए, प्रश्न में चौथे नंबर का प्रश्न है कि एक ही बाप एक ही समय सबको एक ही खजाने देता है, फिर भी अंतर क्यों? क्योंकि हर एक का पुरुषार्थ अलग अलग है। इस बात को जानते हुए भी, ड्रामा के रास को जानते हुए भी, इतनी बड़ी राजधानी स्थापन हो रही है, इस बात को जानते हुए भी प्रेम का अतिरेक हो रहा है यहाँ पर। इसके लिए बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि चाबी दे दो, मांगनी कर रहे हैं, चाबी दे दो, ताकि सभी जल्दी जल्दी संपूर्ण बन जाए, जल्दी जल्दी सभी सभी की बुद्धि परिवर्तन हो जाए। तो रावण को जलाना कौन सी शुभ आशा है बाबा की? सबसे पहले तो अवगुणों का नाश करना, सर्वगुणों को धारण करना, सभी विकारों को वंश सहित समाप्त करना, उसके बाद में ब्रदरहुड की दृष्टि, वसुधैव कुटुंबकम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम, विश्व बंधुत्व की भावना हृदय में जागृत हो जाए। परिवार को भी सहयोग देने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर वन, कैसे दोगे? इसके लिए संकल्पों को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दो, क्योंकि इस परिवार की आत्माओं को भी, इस परिवार या संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इस परिवार की आत्माओं को सहयोग देना है उन्हें भी, और इसका अनुभव भी करना है। तो ये भी एक हमारा बहुत बड़ा कार्य है। इसके लिए भाई भाई की दृष्टि, जो छोटे छोटे हमारी विजन है, दृष्टि है, उससे मुक्त होकर बेहद की दृष्टि को लाना है। सभी आत्माएं हमारी है, ये हमारा परिवार है। बाबा ने कभी कहा है साकार में, मैं केवल तुम्हारा बाप नहीं हूँ। ये मत समझना, गलती में मत रहना कि मैं केवल तुम्हारा बाप हूँ, मैं सारे सकल विश्व का बाप हूँ। तो ऐसी भावना है, और उसके बाद में फिर दिवाली मनाना। दिवाली मनाना अर्थात इस दीपक को जगाना। एक दीपक यदि ये जग गया तो सारी दीपमाला जग जाएगी, और यही सच्ची सच्ची क्या है, दिवाली है। आत्मा का दीपक जगाना है, बाबा की जो आशा है उन्हें पूर्ण करना, और फिर उसके बाद में क्या मिलेगा, राज तिलक मिलेगा। इस मुरली में बाबा ने सभी बच्चों की एक आदत है उसके ऊपर ध्यान खिंचवाया है। कौन सी आदत है? कब, कब को क्या कर दो, अब में परिवर्तन कर दो। कभी कभी को क्या कर दो, अभी अभी में परिवर्तन कर दो। साकार बाबा को भी क्या पसंद था, अब करना और अब कराना। उदाहरण दिया ट्रेन का, भले ट्रेन तुम्हारे लिए रुक जाए पर फिर भी तुम्हें अपने समय पर पहुंचना है। अभी अभी पहुंचो, अभी अभी करो। डू इट नाउ एटीट्यूड, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है डू इट नाउ, अभी अभी करना। तो इस मुरली की चर्चा हम इस टॉपिक के ऊपर करेंगे कि अभी अभी क्या करना है, अभी अभी न करने से क्या क्या नुकसान होते हैं, अभी अभी करने से क्या क्या फायदे होते हैं, और कौन कौन सी बातें हैं जो आज करनी है, अभी करनी है, अब करनी है। उसमें भी दो विभाग है, एक तो ज्ञान योग से संबंधित और दूसरा है जो ज्ञान योग से संबंधित नहीं, सेवा से या फिर दूसरी जो बातें हैं उनसे संबंधित। तो सबसे पहला है, बाबा ने कहा ये नई भाषा सीखो। तुम्हारे पास कौन सी भाषा है? कब की भाषा है। अभी कौन सी भाषा सीखो? सीखो अब की भाषा। तो नई भाषा सीखना इतना आसान काम नहीं है। नई भाषा सीखने के लिए बहुत सारी चीजें करनी होती है, उसका व्याकरण समझना होता है, उसके उच्चारण समझने होते हैं, शब्दकोश थोड़ा बढ़ाना होता है, उस भाषा में स्वयं को डुबोना होता है, तब कहीं नई भाषा सीखी जाती है। ऐसे लोगों के बीच में जाना होता है कि जो वो भाषा बोलते हैं, नेटिव वो भाषा बोलने वाले जो लोग हैं उनका संग करना पड़ता है, वही भाषा में पढ़ना होता है, वही भाषा में सुनना होता है, गीत सुनना है तो वही भाषा का सुनो, बोलना है तो उसी भाषा में बोलो, और सोचना सबसे मुख्य जो धारणा है भाषा सीखने के लिए वो है उस भाषा में सोचना आरंभ करना, उस भाषा में चिंतन करना आरंभ करना, तब वो भाषा सीखी जाती है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो कोई भी विश्व की भाषा हो। भाषा सीखने के लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए, सुनना उसी में, बोलना उसी में, सोचना उसी में, गीत भी सुनना है तो वही सुनो, सब कुछ उसी भाषा में हो। तो यहाँ अभी हमारी जो भाषा है वो है कब की भाषा, सीखनी है अब की भाषा। तो ऐसे लोगों के बीच जाना पड़ेगा जो ये भाषा बोलते हैं, ऐसे देश में जाना पड़ेगा जो ये भाषा बोलते हैं। कई लोग अंग्रेजी सीखने के लिए विदेश में जाते हैं, परंतु सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वहां जाकर अपनी भाषा बोलने वाले लोगों को ढूंढ लेते हैं। गुजराती जब जाते हैं तो वहां जाकर गुजराती बोलने वालों को ढूंढ लेते हैं, इसके लिए कभी सीख ही नहीं पाते उस भाषा को। तो जो अब की भाषा बोलने वाले हैं उनके बीच में कब की भाषा वालों को नहीं ढूंढना। तो सबसे पहले तो संग करना पड़ेगा उन आत्माओं का जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। इस ज्ञान मार्ग में यदि उन्नति होनी हो तो क्या करना होता है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूत श्री कथा मम प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति बताई है कि श्रेष्ठ संग करना नवदा भक्तियों में। तो श्रेष्ठ आत्माओं का संग इस ज्ञान मार्ग में, श्रेष्ठ पुरुषार्थियों का संग करना, ये फर्स्ट स्टेप है। अब हम चर्चा करेंगे ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसमें जो हमें अभी करनी है, ज्ञान और योग से संबंधित वो बातें बताओ। ज्ञान और योग से संबंधित वो कौन सी बातें हैं जो कल नहीं करनी है। ऐसे कहते हैं कि नॉट नाउ, ये जो बच्चा है नॉट नाउ का, आज नहीं का जो बच्चा है जल्दी ही बड़ा होकर नेवर बन जाता है, नेवर अर्थात कभी नहीं। इसके लिए जो नॉट नाउ का जो बच्चा है, अब नहीं का, अगर तुरंत वो बड़ा होता है और कभी नहीं बन जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं ज्ञान और योग की जो अब करनी है, अभी करनी है, इसी वक्त करनी है, आज करनी है, सून इमीडिएटली ताबड़तोब फटाफट डू इट नाउ, वो बताओ। ज्ञान योग से संबंधित, बाकी सेवाओं से संबंधित और बाकी कार्यों से संबंधित वो दूसरी बातें हैं। अच्छा, आत्मा समझने की तो अभी अभी बैठे बैठे ही स्वयं को आत्मा समझना, अभी अभी इस पल में जीना है। इकहार्ट टोल नाम का एक ऑथर है, लेखक, उसने किताब लिखी है पावर ऑफ नाउ, बड़ी प्रसिद्ध किताब है पावर ऑफ नाउ इकहार्ट टोल। उसमें सारी किताब है इस पल जीना, पास्ट के चिंतन में नहीं, पास्ट हो गया वो हो चुका है, अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता है, इट इज डेड, मुर्दा है वो, उससे प्रेरणा भी तो क्या प्रेरणा ले। तो पास्ट एक तरफ और फ्यूचर में भी नहीं जीना है, दो पैटर्न के बीच में जो बीच का जो वर्तमान है वो दबा जा रहा है, पीसा जा रहा है, इसके लिए जीना इस मोमेंट पे है, अभी आज अब इस वक्त जो हो गया वो हो गया, समाप्त, फुल स्टॉप। उसके पश्चाताप में भी अभी समय बर्बाद नहीं करना है। समय सब बहुत अमूल्य खजाना है, आज की मुरली में बोला है बाबा ने। इस खजाने में सारे खजाने समाये हुए हैं। तो सबसे पहला जो बताया वो है, आज से अभी से इसी वक्त क्या करना है अपने आप को, आत्मा समझने का अभ्यास। थोड़ा और दूसरी बातें, सेवा नहीं, ज्ञान और योग से संबंधित, भाई भाई की दृष्टि। तो सबसे पहले आत्मिक स्वरूप में स्थित होना कब होना है, आज और अब। दूसरा, जैसे मैं आत्मा हूँ वैसे ये सभी आत्माएं हैं। अपने आप को देह के चिंतन के थोड़ा ऊपर रखना है, देह का चिंतन, देह का आकर्षण, देह की आसक्तियां। आज मुरली में कहा है प्रश्न नंबर 2, ज्ञान के खजाने से क्या होता है, देह और देह की दुनिया से मुक्त होकर जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करना। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, अभी की जीवन मुक्ति, सतयुग जीवन मुक्ति का अनुभव करना और फिर मुक्ति धाम में जाना, ये किससे होगा, ज्ञान के खजाने से संपन्न होगा। तो आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, ब्रदरहुड का भाव, सभी हमारे हैं, कोई भी पराया नहीं है। तीसरा अभ्यास जो आप आज करना है और अभी करना है, अभ्यास स्वमान का अभ्यास, वो आत्मा में आ गया, आत्मा हूं पर कौन सी आत्मा हूं, फिर उसमें आगे का चिंतन ये हो जाएगा, आत्मा के गुणों का चिंतन, आत्मा का चिंतन, स्वमान का अध्ययन, ये सारी एक ही बातें हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात है मुरली, मुरली में 3 बातें। सबसे पहला मुरली पढ़ना, आज की मुरली आज ही पढ़ना। दूसरा, मुरली की चर्चा करना। और तीसरा, मुरली का चिंतन करना। ये 3 बातें हर ब्राह्मण को अभी अभी करनी है, आज ही करनी है। आज का दिन जाने के बाद ऐसा कोई है जो कल की मुरली का चिंतन करता है? बहुत कम। पढ़ने वाले भी कोई है? क्योंकि नया माल सामने है, एक बार हाथ में 24 घंटे के बाद शायद ही कोई होगा जो उसे फिर से खोलकर पढ़ना, चिंतन करना, मनन करना, चर्चा करना, डिस्कस करना। तो ये जो कार्य है, हर दिन की जो मुरली है उसका अध्ययन करना, उस पर मनन करना, उसकी चर्चा करना। ब्राह्मण, बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा है, ब्राह्मणों का कर्तव्य है, बाबा ने कर्तव्य कहा है, क्या, मुरली का, मुरली की चर्चा करना। जब तक उस बात की चर्चा नहीं की जाती, बहुत सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती। तो चर्चा करना, ये कार्य कब करना है, हर रोज, आज और अभी करना है। सुनना दूसरी बात है, पढ़ने की बात कर रहे हैं हम, ध्यान से पढ़ना, एक एक शब्द को पढ़ना, एक एक शब्द को समझना, अर्थ को समझना, भावार्थ को समझना, शब्दार्थ को समझना, किस अर्थ से ये कहा हुआ है, सब कुछ समझना। धीरे धीरे चिंतन करते करते या मनन करते करते ही मगन अवस्था को प्राप्त होती है आत्मा। मगन अवस्था में वही सुख है जो योग में सुख है। तो ये है तीसरा कार्य। चौथा कार्य, श्रेष्ठ आत्माओं का संग करना, ऐसी आत्माओं से दूर रहना जिन्हें ज्ञान और योग में कम रुचि है। सेवाओं में बहुत अधिक रुचि है, परंतु ज्ञान और योग में कम रुचि है, क्योंकि इस जीवन में आधार ज्ञान और योग है। जिसके जीवन में ज्ञान और योग है, वहां सेवा तो स्वतः ही आएगी, फिर पीछे पीछे। सेवा का बहुत विस्तार है, इसके लिए वहां खोने का बहुत ज्यादा मौका है। इसके लिए उन आत्माओं का संग करना जो कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। और क्या करना है, आज अभी, बहुत दूसरे तरह के पॉइंट है, और वो भी एक अभ्यास है, क्रिया कर्म कौन से क्या करना है, पुण्य का खाता, उसमें भी क्या, जैसे ये कर्म बताओ, कर्म ज्ञान योग से संबंधित किया हुआ कौन सा कार्य जो आज करना है, वो संकल्प नहीं, शुभ भावना नहीं, कर्म। जैसे चिंतन एक कर्म बताया, पढ़ना एक कर्म बताया, चर्चा करना एक कर्म है, वैसे ज्ञान बाप का परिचय देना, चलो ये सेवा में आएगा, नहीं जिसमें पुरुषार्थ और ज्ञान और योग जो है उससे संबंधित, जैसे अमृत वेला जो है, अमृत वेले के लिए श्रेष्ठ संकल्प या अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने का संकल्प, या उसमें अमृत वेला जो है हमारा, जैसे आज ही हम संकल्प करें कि कल का अमृत वेला कैसा होगा, ये एक क्रिया है उसको शक्तिशाली बनाने की, या कहो प्लानिंग आज रात में होनी चाहिए कि हमारा अमृत वेला कल कैसे शक्तिशाली हो, उसकी प्लानिंग आज करना, प्लान बनाना किस सोमान के ऊपर कौन सा अभ्यास हम करेंगे और क्या अनुभव करना है हमें, उसकी प्लानिंग करना, ये एक कर्म, ये एक कार्य हो गया ज्ञान योग से संबंधित। और उसका क्या करना, मंथन वो बोल दिया, और चेकिंग करना, चार्ट लिखना, तो ये एक कार्य है, क्या करना है, चार्ट लिखना, ये कार्य है ज्ञान योग से संबंधित कार्य है, अपनी चेकिंग करना, अपने आप को देखना। और मधुबन जैसा स्थान कोई नहीं, आज बाबा ने कुमारियों से मुलाकात, मधुबन के लिए क्या कहा है, यहाँ के वायुमंडल का वरदान है, यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा लिफ्ट है और वातावरण का वरदान है यहाँ पर, वहां पर एक्स्ट्रा, वहां पर मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ मेहनत नहीं, इसके लिए पक्का वादा करके जाओ, वहां जाकर बदल नहीं जाना, कुमारियों को बोला है बाबा ने, वहां जाकर बदल नहीं जाना। तो जब मधुबन में हम है, यहाँ बैठकर भी यहाँ से अपने सेवा केंद्र पर क्या करना है, जाकर ज्ञान योग कैसे करना है उसकी प्लानिंग यहाँ करनी है, वहां जाकर सेवा भी कैसी करनी है प्लानिंग करने का, ये एक श्रेष्ठतम स्थान है मधुबन, यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ के योग तपस्या का वायुमंडल, यहाँ पर बैठकर वहाँ क्या करना है इसकी प्लानिंग करना, वहाँ कौन कौन सी चीजें हमको डिस्टर्ब करती है, चाहे सेवा केंद्र, चाहे घर या ऑफिस, उसमें हम क्या ऐसा करें, वो यहाँ बैठकर सोचने के लिए बहुत अच्छा समय है, मन में स्पष्टता है, श्रेष्ठ संघ है, ज्ञान योग का वातावरण है, और उस तरह की वहां की जिम्मेवारी नहीं है, इसके लिए इस अवसर का लाभ उठाना है, ठीक है। तो ये एक कार्य है, चार्ट लिखना पहला कहा, एक तो मुरली के संबंधित, चार्ट के संबंधित, अमृत वेला के संबंधित। अगर अमृत वेला नींद आ रही है तो क्या करें, सोचो कि आज नहीं कल अमृत वेला नींद करेंगे, ऐसे कल पर डालो, ऐसी कुछ बातें हैं जो कल पर डालनी है, ऐसी कुछ बातें हैं जो आज ही करनी है, कल पर डालने वाले बातों की भी लिस्ट है, जैसे अभी क्रोध आ रहा है तो क्या कहो, कल करेंगे, अभी अभी बदला लेना है, किसी ने कुछ कहा तो कल लेंगे, अभी अभी किसी को शिक्षा देनी है, किसी ने गलती की है, कोई छोटा कोई जूनियर या कोई सहयोगी कोई साथी, हमको इच्छा होती है कि अभी अभी सुना दो उसको श्रीमत क्या होती है, परंतु उस आवेश में क्रोध समाया हुआ होता है, उसमें गलतियां हो सकती है। चाणक्य ने कहीं कहा है, तीन अवस्थाओं में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, सबसे पहला भय, जब भयभीत हो तो कोई निर्णय नहीं लो, दूसरा है क्रोध, जब क्रोध में हो तो कोई निर्णय नहीं लो, रुक जाओ, क्रोध को थोड़ा शांत होने दो, उसके बाद में जीवन में जो निर्णय करना है निर्णय करो। तो सबसे पहला है क्रोध, दूसरा है भय, और तीसरा क्या हो सकता है, संशय, चिंता, और ये भी हो सकते हैं, सभी राइट है, पर उन्होंने कहा है जब आसक्ति में फंसे हैं किसी के, बाकी सभी भी उत्तर राइट है, पर ये अवस्थाएं ऐसी है, या फिर हम कहें विकारों के वशीभूत है जब हम, तब कोई निर्णय अगर करते हैं तो वो गलत ही होता है, इसके लिए थोड़ा रुक जाओ, जब क्रोध में है तो अपने मन को कहो कि इस बात का निर्णय आज नहीं, थोड़ी देर बाद करेंगे, एकांत में जाकर मन को शांत करो और फिर उसी परिस्थिति को उस अवस्था में फिर से अवलोकन करो और फिर देखो अब क्या करना चाहिए। तो कुछ कुछ बातें कल पर डालनी है, कुछ कुछ बातें आज ही करनी है। प्रश्न एक दूसरा है कि आज करने से, अब करने से फायदे कौन कौन से हैं? आज करने से क्या क्या फायदे? आज की बात आज ही कर ली, फायदे बाप दादा की दुआएं मिल जाएगी ज्ञान योग से संबंधित में, और शक्ति का अनुभव होगा, और समय बच जाएगा। सबसे पहले इंग्लिश में कहावत है स्टिचिंग टाइम सेव नाइन, कि एक बार थोड़ा सा फटा है एक टाका लगा दो, अगर वो नहीं तो फटते फटते 9 टाके लगाने पड़ेंगे। ठीक है ना लक्ष्मी नारायण भाई? तो एक टाका अगर थोड़ा फटा है तो वही तुरंत सिला देना है उसको, ताकि बढ़े ना, नाउ और नेवर। एक तो ये बात, दूसरा समय बच जाएगा, मेहनत बच जाएगी, और पेंडिंग हो जाएगा अगर छोड़ दिया तो। जब स्थूल कार्य अगर देखो, हमें कुछ सफाई करनी है कोई अलमारी, हम सोचते कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और वो इतना बड़ा हो जाता है, और जब भारी होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो कुछ स्थूल सारे कई लिस्ट है कर्मों की जो आज ही करनी है, जैसे कि सेवा हो गया, जैसे कि कुछ साफ सफाई का कार्य हो गया, वो आज और अभी। इंग्लिश में कई किताबों में 2 मिनट या 3 मिनट प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें ऐसा कहा हुआ है कि ऐसे कौन से कार्य है जिनको केवल 3 ही मिनट लगते हैं करने को, परंतु उसको आपने हमेशा से टाला है, जैसे साफ करना, सफाई करना, या कुछ और इस तरह के छोटे छोटे जो कार्य है जो हमको लगता है आज नहीं कल करेंगे, उनको आज ही करो और जबरदस्ती करो तो वो आदत बन जाएगी। उसकी एक लिस्ट बनाओ, कौन से ऐसे छोटे छोटे कार्य है कार्य व्यवहार में या घर पे या सेवा केंद्र पर या फिर मधुबन में रहते हुए यहाँ अपने कमरे में, जो कि छोटे है परंतु हमने उसको हमेशा टाला है। टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, इट्स अ थीफ ऑफ टाइम, समय को चुरा लेता है ये डिले करना, तो उनकी भी एक लिस्ट बनाना। तो हम बात कर रहे थे कि क्या क्या फायदे होते हैं, अब दूसरा प्रश्न है नुकसान क्या क्या होते हैं आज का कार्य कल पर डालने से। वो बढ़ जाता है, फिर समय ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, और टेंशन भी ज्यादा होता है, शक्ति खर्च ज्यादा होती है, ज्यादा टेंशन होता है, और 9 टाके लगाने पड़ते हैं फिर। ये बात है आदतों को बदलने की। आदत कैसे बनती है, तो इन 3-4 विषयों पर सभी चिंतन कर सकते हैं कि अब कौन कौन से कार्य करने हैं, अब करने से फायदे क्या क्या हैं, अब ना करने से नुकसान क्या क्या है। अब और एक चौथा प्रश्न है कि अब करने की विधि क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, प्रोग्राम क्या बनाए कि जिससे जो कार्य हम हमेशा से ही टालते आ रहे वो हम आज करना चालू करें। कई विचारकों ने अपने विचार इसके ऊपर दिए हैं। कई लोग कहते हैं पहले तो लिस्ट बनाओ, फर्स्ट स्टेप है लिस्ट बनाओ कौन कौन से कार्य करने हैं, चाहे ज्ञान योग से संबंधित या चाहे गैर ज्ञान योग वाले या सेवा वाले या कोई और प्रकार के, लिस्ट बनाओ सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप। दूसरा है प्रायोरिटाइज द थिंग्स, प्रायोरिटाइज मतलब प्राथमिकता किसकी ज्यादा है, सबसे पहले हमको कौन सा कार्य करना है। अभी मधुबन में आए हैं तो मार्केट में ज्यादा घूमना फिरना है या तपस्या करना है, इसकी पहले थोड़ी प्लानिंग चाहिए, नहीं तो आधा समय तो घूमने फिरने में चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग, उसमें भी लिस्ट बनाना, फेहरिस्त एक तैयार करना, और फिर प्राथमिकता, उसके बाद है रिमाइंडर। कार्य करते करते वो भूल जाता है, इसके लिए स्वयं को क्या करना है, रिमाइंड कराना है, बार बार रिमाइंडर देना है, और फिर सेल्फ टॉक, ये भी एक विधि है। सेल्फ टॉक अर्थात स्वयं से रूरियान करना, स्वयं से बात करना, स्वयं के मन को बताना कि इससे फायदे क्या है। अमृत वेला बहुत पावरफुल किया, उसके बाद जाके सो गए, और कब उठे, कभी 7 बजे, कभी 6:30 बजे, कभी पता नहीं कब, इससे नुकसान क्या है। स्वयं को, स्वयं के मन को ही समझाना कि जो मैं कर रहा हूं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेल्फ टॉक। ये विधि है डूइंग इट नाउ एटीट्यूड को लाने की, डूइंग इट नाउ एटीट्यूड अर्थात आज का कार्य अभी करना है, उसके बाद में बार बार चेक करना जो कहा, रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए छोटी छोटी चिट पेपर होते हैं, वो चिपका के रखना, भूल ना जाए, अपने आप को जीनियस नहीं समझना है कि हम कुछ भी नहीं भूलते, हमको सब याद है। बड़े से बड़ा आदमी भी बहुत सारी चीजें भूलता है। इसके लिए जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, एम है, उसको बार बार रिवाइज करते रहना और इसके विषय में चर्चा करना। दूसरे कई लोग कहते हैं कि हमने जो प्लान बनाया सबको बताओ कि हम भोजन करते समय मौन में भोजन करेंगे, ये संकल्प 10-12 लोगों को सुना दो, फिर क्या होगा? तो वो लोग याद दिलाएंगे ना। तो थोड़ा जो प्लानिंग करते हो थोड़ा सुना दो दूसरों को, ये भी एक विधि है। टेबल टॉक और भी कुछ हो सकता है। आज का कार्य आज करने के लिए इसको क्या कर दो, हैबिट बना दो। हैबिट अर्थात आदत, आदत बना दो इसको। एक ही बात, एक ही संकल्प को मन में बार बार डालो तो क्या होता है, वो मन उसे स्वीकार करने लगता है, चाहे वो गलत भी हो। हिटलर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने 3-4 साल तो यही काम किया, क्या, कि अपने भाषणों में एक ही बात बताई सबको कि इन यहूदियों के कारण जर्मनी का पतन हो रहा है, इन यहूदियों के कारण जर्मनी का पतन हो रहा है। इतनी बात बिठा दी सबके मन में कि सारे जर्मन निवासी उसकी तरफ हो गए और यहूदियों के विरोध में हो गए। ज्यूज और जो यातनाएं उनको दी गई वो ऐसे ही नहीं दी गई, उसके लिए केवल एक हिटलर ही जिम्मेवार नहीं है। उसके दोस्त उसको कहते थे तुम ये क्या कहते हो, क्यों यहूदियों को ऐसे करते हो? कहता था कि मुझे पता ऐसा नहीं है परंतु यही विधि है, क्योंकि यहूदी जो है वो कमजोर है, कमजोर लोग मुझे नहीं चाहिए इस देश में, उनका संपूर्ण नाश करना है, उसने ये विधि अपनाई थी। तो चाहे झूठी बात क्यों ना हो पर यदि बार बार सुनाई जाए, बार बार बताई जाए तो मन उसे सत्य मान लेता है, सत्य स्वीकार कर लेता है। कोई भी बात बार 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 मन में डालते जाओ। विदेश में एक फ्रेंच में, फ्रांस में एक लेखक हुआ था, 3 मस्केटियर्स नाम की किताब उसने लिखी है। तो अलेक्जेंडर डुमास, उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो कथाएं लिखता था और वो कथाओं के जो पात्र होते थे उनसे इतना एक रूप होता था कि उसका जो कमरा था उसके वो अपने पात्रों के साथ झगड़ता था, उसने वो जैसे उसके लिए लाइव हो जाते थे, जैसे वो जिंदा है। लोग पूछने आते थे क्या हुआ, ये झगड़ा क्यों हो रहा है, वो कहता है ये देखो ये मेरे पात्र की ये स्त्री ना ऐसा कर रही है इसके लिए मैं उसके साथ झगड़ा कर रहा हूँ। तो जो भी चीज मन में बार बार डाली जाती है मन उसे स्वीकार कर लेता है, वो जैसे कि आदत बन जाती है। कोई भी चीज हो चाहे वो, कोई भी चीज हो, बार 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 उसके बारे में चिंतन करते जाओ, वो आदत बन जाएगी, मन उसे स्वीकार करने लगेगा। हम रात को सोते समय मन को संकल्प देंगे कि मुझे इतने बजे उठना है, उतने ही बजे उठेगा। सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग ऐसी है कि वो वैसे ही फॉलो करता है। सबकॉन्शियस अवचेतन मन कभी बहस नहीं करता है, ये उसका नियम है, कभी बहस नहीं करता है, कभी डिबेट नहीं करता है, वो जो भी उसको बार बार दिया जाए उसको वो स्वीकार करते। ऐसे ही एक दूसरा एक लेखक हुआ है रूस में, लियो टॉल्स्टॉय, उसने लिखा है कि एक बार वो तब एक अपनी किताब लिख रहा था रिसरेक्शन, तो वो किताब की जो एक स्त्री थी पात्र उस ड्रामा की, वो निरंतर जैसे उससे बात करते रहता था। दिखाया है एक बार एक सीढ़िया थी ऊपर जाने वाली, बस उसमें इतनी सरकरी थी वो कि दो ही लोग उसमें से जा सकते थे। सामने से एक आदमी आ रहा था, लियो टॉल्स्टॉय यहां से जा रहा है, उसको लगता है कि वो स्त्री भी मेरे साथ है, तो वो बाजू हटता है और नीचे गिर के अब उसका फ्रैक्चर हो जाता है। तो लोग उसको पूछते भाई तुम दो ही तो लोग थे, वो उधर से आ रहा था, तुम तो आराम से जा सकते थे, वो दो नहीं वो स्त्री भी मेरे साथ थी, क्योंकि उसका जो जब वो लिख रहा था तो जो पात्र था जो कैरेक्टर था वो इतना लाइव था कि उसके लिए वो जीवंत थी। तो जो भी व्यक्ति इस तरह के रहते, जैसे इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे, जब वो एक बार किसी पागलखाने में जेल में गए तो उसी दिन एक पागल जो था वो ठीक हो गया था 3 साल के बाद, तो उसकी छुट्टी हो रही थी, तो जेलर को लगा क्यों ना इन्हीं के हाथों से उसकी थोड़ा जा रहा है तो क्यों ना कराई जाए। तो उस पागल को मिलाया जाता है नेहरू जी से और कहते हैं कि तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू है, तो वो पूछता है कि आप ही पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो वो कहता है आप यहाँ आप भी भर्ती हो जाओ, क्योंकि 3 साल पहले मैं भी यही कहता था, इसीलिए मुझे भर्ती कर दिया गया और अभी मैं ठीक हो चुका हूँ। जो भी बात मन में डाली जाती है वो मन उसे स्वीकार कर लेता है। आदत इसी नियम पर कार्य करती है। इस नियम को समझ लो कि मन में जो बात हमें करनी है, जो हमें बनना है, जैसा हमें होना है, समान का अभ्यास भी किस लिए है? इसी बात के लिए। जैसे विश्व भर में ऐसे कितनी ही आत्माएं आज तक हुई है जिन्होंने ये घोषणा की थी हम पैगंबर हैं, हम भगवान हैं, वो भी इसी आधार से। वैसा ही इस्लाम में एक बात सुनाते हैं, जब खलीफा उमर था, एक आदमी आया, वो कहता था कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ और मैं पैगाम देकर ही रहूंगा। तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया क्योंकि वो ऐसे कहते ही रहता था कि मेरे पास संदेश है अल्लाह का। तो उनको समझाया, मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर था, तुम कोई नहीं हो। वो कहता था नहीं, मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं पैगाम देकर ही रहूंगा। उसने अपने आप को इतना कंडीशन कर दिया था इस बात से कि बस मैं ही हूँ, बार बार अपने आप को समझाया, जेल में डाल दिया गया। समय दिया गया, अभी भी समझ लो नहीं तो तुमको सजा दी जाएगी। वो तो बिल्कुल समझा नहीं। दूसरे दिन जब उमर उससे मिलने जाता है तो वहाँ एक दूसरा भी कैदी होता है, वो भी ऐसे ही तरह से बंद रहता है वहाँ पे। तो उमर उससे पूछता है क्या अब तो सुधर जाओ कि मोहम्मद ही अंतिम पैगंबर है और अल्लाह एक ही है। वो कहता है नहीं, मोहम्मद के बाद मैं ही आया हूँ दुनिया में, दुनिया को मैं संदेश दे के रहूंगा और पैगंबर तुमको जो करना है करो। पैगंबरों को तो दुख तो दिया ही है लोगों ने, सताना तो उनके भाग्य में ही है, मतलब सुख सहन करना। तो दूसरा एक व्यक्ति वहां बैठा रहता है, वो कहता है ये बिल्कुल गलत कर रहा, कह रहा है अल्लाह तो मैं हूं और मैंने इसे कभी भेजा ही नहीं तो उसको किस लिए बंद कर दिया गया? क्योंकि वो कहता था कि मैं ही अल्लाह हूं। जो भी मन को बार बार बताया जाए मन उसे स्वीकार कर लेता है, कुछ भी कहो। फिर उसको छह मास तक, छह हफ्ते तक, छह मास तक, एक साल तक, जितना लंबा हम कहते रहे अपने आप को, मन उसे स्वीकार कर लेगा। मैं फरिश्ता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं महान भाग्यशाली आत्मा हूँ, कोई भी समान लो, वो मन उसे स्वीकार कर लेगा। तो क्या करना है? नई आदतों को क्रिएट करना है, नए एटीट्यूड्स को क्रिएट करना है। एटीट्यूड कैसे क्रिएट करे होगा? रिपीटिशन, बार 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 उसको रिपीट करो। एक दिन, तीन दिन का लक्ष्य रखो सबसे पहले। यदि किसी को अमृत वेले नहीं उठना होता है तो खाली तीन दिन का लक्ष्य रखो, हम तीन दिन अमृत वेले उठेंगे। तीन दिन सफल हुआ उसके बाद में और एक विधि है, स्वयं को थोड़ी शाबाशी, रिवार्ड, स्वयं को शाबाशी देना। उसके लिए कोई कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं के लिए थोड़ी बहुत छूट दिन भर के लिए, तो स्वयं को शाबाशी देना ये भी एक विधि है। किसकी? डूइंग इट नाउ एटीट्यूड को जीवन में लाने की। तो ये करना है, अब की आदत डालनी है। तो जैसे हमने ये ज्ञान योग के लिए किया, वैसे जो छोटी छोटी बातें हैं जीवन की, उन सभी के लिए करना है, आज करना है, अभी करना है। अच्छा, डायरी लिखना ये भी एक आदत है, चार्ट लिखना एक दूसरी बात है, डायरी लिखना दूसरी बात है। डायरी अर्थात जिसमें दिनचर्या लिखना, फिर धीरे धीरे उसी दिनचर्या में चार्ट को इंक्लूड कर देना, ये भी एक बहुत अच्छी आदत है, जिसको हम हर संडे देखेंगे कि मंडे से लेकर तो सैटरडे तक हमने जो रोज की दिनचर्या लिखी है, केवल आज हमने ये किया, आज इधर गए, आज इससे मिले, आज ऐसा किया, आज वैसा किया, ये भी एक बहुत अच्छी आदत है। उसमें फिर धीरे धीरे चार्ट को डालते जाओ। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति हुआ है, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, उसको एक ऐसी आदत थी कि वो डायरी लिखता था रोज की, आज किसी को दुख तो नहीं दिया। जो बाबा चार्ट में बताते हैं ना, वो 17वीं 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वो सब कुछ लिखता था, हर दिन अपनी डायरी लिखता था। तो ऐसी संसार में भी कितनी आत्माएं हैं जो डायरी लिखने की, जिनको आदत है। तो डायरी लिखना, फिर चार्ट लिखना, ये है डूइंग इट नाउ एटीट्यूड। ट्रैफिक कंट्रोल बजेगा, आज माताओं से मुलाकात में बाबा ने सुख स्वरूप का अभ्यास दिया हुआ है, उसी स्वरूप में स्थित हो जाना है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, दुख को तलाक दे दिया है, मनसा वाचा कर्मणा, हर स्वरूप में कैसे चलते फिरते खाते उठते अशोक, दुख की लहर भी नहीं आ सकती, सुख के सागर में झूलने वाले हैं, और सदा सुखी, यह वरदान बाप दादा से प्राप्त हुआ है। तो सुख का सागर मिला तो दुख काहे का। ये सारे सुख के संकल्प है, ये वही संकल्प है जिनको हम बार बार डालेंगे तो दुख जैसे विलीन हो जाएगा। तो सभी इसी स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मुरली का जो शेष भाग है, थोड़ा सा जो बचा हुआ है ट्रैफिक कंट्रोल के बाद। कुमारियों से मुलाकात। कुमारियों के लिए क्या कहा बाबा ने, सभी कुमारियां कौन है? उड़ता पंछी, सदा हल्का, सदा ही ऊपर उड़ने वाली, ऊंची स्थिति वाली। और क्या कहा? सच्ची सीता। सच्ची सीता अर्थात मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले। मर्यादा से बाहर गए तो उड़ नहीं सकेंगे, मर्यादा की लकीर को क्रॉस करेंगे तो भी उड़ सकते हैं, परंतु कैसे? परंतु वो रावण के साथ होगा, परंतु रावण के साथ होगा। फिर तो मर्यादा की लकीर के अंदर अगर देखा जाए रामायण के इस प्रसंग को, तो सीता को सबसे पहले तो मोह उत्पन्न हुआ। सीता परम रुचिर मृग अति देखा, अंग अंग सुकोमल शोभा। पहले तो मोह उत्पन्न हुआ, मोह उत्पन्न के बाद इच्छा उत्पन्न ही हुई कि वो चाहिए। पहला मोह, फिर इच्छा, फिर भेजा कि लेके आओ उसको। उसके बाद में धोखा हुआ उसको, उसका जो विश्वास था राम पर वो भी वहां कम हुआ। जब राम की आवाज सुनी तो विश्वास कम हुआ ना, जबकि उसको पता है कि राम इस तरह कभी पुकार नहीं सकता। तो पहले तो फिर निश्चय में कमी आई, फिर क्रोध भी हुआ जब निश्चय का विरोध किया गया इस बात का, लक्ष्मण पर क्रोध भी करती है। और उसके बाद में अंतिम रावण जो आता है उसको पहचान नहीं पाती, क्योंकि रावण जो जीवन में प्रवेश करता है वो यति के वेशा, मानस में लिखा है आवा रावण यति के वेशा, यति के वेश में आता है वो, पहचान नहीं पाई। और अंतिम जो भूल है उसकी वो है वो लकीर को क्रॉस कर गई, मर्यादाओं की लकीरें जो है उनको क्रॉस करते ही शोक वाटिका। तो बाबा ने कहा तुम सब कौन हो, सच्ची सीताएं, अर्थात मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले। रावण तो इंतजार में खड़ा है कब बाहर निकले और उठाकर ले जाओ गगनपथ। गगनपथ शब्द है दूसरा। बाबा ने माताओं से मुलाकात में सुख स्वरूप की बात की और दूसरा शस्त्रधारी की बात की। उसके बाद में पांडवों के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बात की है, बाबा के सामने जब रहते हैं तब तो शक्ति स्वरूप और सेवा के क्षेत्र में पांडव। यहाँ पर एक योग का सूक्ष्म अभ्यास है, आत्मा में दोनों ही संस्कार है, मेल के भी फीमेल के भी। योग में सदर्शन चक्र जो हम फिराते हैं उसमें ये अभ्यास किया जा सकता है कि मैं आत्मा अब इस तन में हूँ, इसके पहले किसी और तन में थी, कभी पुरुष के तन में कभी स्त्री के तन में, कभी पुरुष के तन में कभी स्त्री के तन में। बाबा ने कहा इसलिए देहभान भूला हुआ है, क्योंकि शक्तियां अपने आप को भाई समझती है और पांडव अपने आप को शक्तियां समझते। मजा ही तब आता है जब आत्मा सीता बनकर राम को याद करती है, सर्वशक्तीय शक्ति बनकर सर्वशक्तिवान को याद करती, आशिक बनकर माशुक को याद करती है, इसमें मजा है। तो यही ड्रामा में वंडरफुल पार्ट है बाबा कह रहे हैं। तो ये भी एक योग का अभ्यास करना कि मैं आत्मा अब इस समय इस तन में हूँ, इसके पहले किसी और तन में थी, उसके पहले किसी और तन में, ऐसे पीछे पीछे जाओ, सतयुग से अभी संगम युग से पीछे 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 द्वापर तक पहुंचो, फिर उसके पहले देव शरीर, फिर कभी देवी शरीर, देव शरीर देवी शरीर, देव शरीर देवी शरीर, इस तरह से ये उल्टा चक्र है। ये भी एक योग का प्रयोग है, योग का अभ्यास है। उसके बाद और भी कोई प्रश्न सारे बहुत सारे पूछे, पांच प्रकार की के खजाने बाबा ने कहे हैं। सबसे पहला तो ज्ञान का, फिर योग, फिर शक्तियां, फिर धारणा से गुण प्राप्त होते हैं, सेवा से खुशी और दुआएं प्राप्ति होती है, और सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, समय का खजाना है। और अंतिम समय कौन सी सेवा होगी, कौन सी सेवा करनी पर ध्यान रखना है, संकल्पों की सेवा, संकल्पों को पावरफुल बनाना, शक्तिशाली बनाना। उसके लिए भी रमणीकता और एकांत चाहिए, शक्तिशाली स्थिति के लिए कहा ना, तो बैलेंस। तो संकल्पों को शक्तिशाली बनाने यहाँ जब हम हैं तो कौन कौन से संकल्प है जो बहुत पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल, ऐसे संकल्पों का हमारे पास लिखित हो, स्टॉक हो, कुछ संग्रह हो, और बार बार उन्हें रिवाइज करते रहना। इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए कुछ संकल्प चाहिए रहते हैं, इमरजेंसी में इंजेक्शन काम करते हैं, गोलियां काम नहीं करती है, जैसे किसी ने अपमान ही कर दिया, आप क्या करें, और वो भी सबके सामने, उस समय कौन से संकल्प लिए जाए। हार हो गई कहीं, क्या किया जाए, माया से धोखा हो गया, अब क्या किया जाए, उदास हो जाए, पश्चाताप करे, दुखी हो जाए, पहले से ही कुछ संकल्प हमारे पास रेडीमेड लिखे हुए हो, बहुत पावरफुल, जो और जो हमारे चुने हुए हो, किसी के दिए हुए नहीं, वो हमारे चिंतन से निकले हुए, उधार के चिंतन से नहीं, अपना अपने चिंतन से निकाले हुए वो पावरफुल संकल्प। इस परिस्थिति में कौन से संकल्प किए जाए, उसका स्टॉक। तो पावरफुल संकल्प से क्या करो, परिवार को सहयोग दो, इसका अनुभव करो। और भी कोई बात कही है प्रश्न में, और भी एक प्रश्न है लास्ट, सेवा में कौन सा भाव हो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ हो, शुभ भावना, शुभ कामना हो हर आत्मा के लिए। वरदान में बाबा ने इस जीवन का आधार वैराग्य के लिए क्या कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, इसके सिवा यही संसार है, इसी में वस्तु, इसी में वैभव है, इसी में सब कुछ है, व्यक्ति वैभव सब इसमें समाया हुआ, दूसरा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। चीन में एक जैन फकीर हुआ था 8वीं शताब्दी में, उसका नाम था हुई हाई। तो हुई हाई, हुई हाई जो था वो बहुत इधर उधर घुमा, पर उसका बहुत ही सच्चा साधक था, और गुरु के द्वार पर जब पहुंचा तो गुरु ने पूछा उसको, पेकिंग से आया था वो, पेकिंग बीजिंग का चाइना की जो कैपिटल है उसका पुराना नाम है, वो कहता है पेकिंग से आया हूँ। तो गुरु पूछता है पेकिंग में चावल का भाव क्या है, तो वो शिष्य कहता है, वो सबसे ये गुरु यही प्रश्न पूछता है, पहले कहाँ से आए हो और चावल का भाव। तो वो कहता है मुझे क्या पता, जो मैंने छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अभी मेरा उससे क्या संबंध है, मैं यहाँ जिस कार्य के लिए आया हूँ बस वही मेरा फोकस है। कहता है कि तू ही मेरा पक्का शिष्य है, आज तक जो भी लोग आए उन्होंने तो चावल के भाव भी बताए, ना केवल पेकिंग के, अहमदाबाद, आबू, दिल्ली, सबके भाव उनको पता रहते। बुद्धि इतनी भटकती रहती है संसार में कि कैसे एकाग्र हो। तो हाई हुई जो होता है वो एक बहुत बड़ा जेन मास्टर बन जाता है। तो इस तरह से आज की मुरली का सार जो है वो है अष्टमी, दुर्गुणों का नाश, सद्गुणों को धारण करना, रावण को अंश सहित राज्य सहित समाप्त करना, सच्ची दिवाली मनाना, भरत मिलाप करना, भाई भाई की दृष्टि रखना और सेवा में सफलता पाना, और उसके बाद तिलक लगाना, राज तिलक लगाना, आज करना, अब करना, ये नई भाषा सीखना, सुख के सागर में समाये हुआ रहना, शक्ति अर्थात शस्त्र सारे हमारे साथ हो, ये हमारे श्रृंगार है, अभ्यास करना, इसके पहले मैं आत्मा मेल्स में थी, कभी फीमेल में थी, और उड़ते रहना पंछियों की तरह, दृढ़ संकल्प से ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, ऐसे बाप दादा के श्रेष्ठ संकल्प को साकार करने वाले, ऐसे अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली से, ऐसे अविनाशी दृढ़ संकल्प की तीली से अविनाशी विजय प्राप्त करने वाले, ऐसे बाप समान अब की भाषा को जीवन के हर कर्म में लाने वाले, ऐसे कभी को सदा के लिए समाप्त कर अपनी मूर्त में बाप की सूरत दिखाने वाले, ऐसे विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते, ओम शांति। आधा मिनट योग करके फिर जाएंगे।